आशिका एजेंसी में अपना काम संभाल चुकी थी। जब उसे मौका मिला और आसपास कोई नहीं था, तब उसने सबसे पहले अभिमान को अपने बारे में बताने का सोचा। वो जानती थी कि अब तक अभिमान को ये पता चल गया था कि आशिका को आकाश लेकर गया है, और ऐसे भी वो उसके लिए परेशान होगा। आखिरी बार जब उनकी कॉल पर बात हुई थी, तब भी अभिमान उसके लिए बुरी तरह घबरा गया था। वहीं दूसरी तरफ, जब अभिमान को आशिका का कोडेड मैसेज मिला, तो उसे कुछ समझ नहीं आया। आशिका का मैसेज कंप्यूटर कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जो कि उसके लिए समझना आसान नहीं था। अभिमान ने उसे तुरंत रचित को फॉरवर्ड कर दिया था। मैसेज फॉरवर्ड करने के बाद अभिमान ने तुरंत उसे कॉल किया और बेसब्र होकर कहा, जल्दी पढ़ो उसमें क्या लिखा हुआ है, मुझे उसका रिप्लाई करना है। तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगे? तुम अच्छे से जानते हो ना तुम्हारी वाइफ कौन है, और वो इस तरह इस लैंग्वेज में मैसेज भेज रही है तो उसे पढ़ना भी आसान नहीं होने वाला। रचित ने हल्की चिढ़न भरे स्वर में जवाब दिया, क्योंकि वो सोने जा रहा था। रचित उठा और उसने आशिका के मैसेज को अपने लैपटॉप में फॉरवर्ड करके उसे डिकोड करने लगा। उसके लिए ये थोड़ा मुश्किल साबित हो रहा था। क्या वो एक नॉर्मल मैसेज नहीं कर सकती? लेकिन नहीं, मैडम को हमेशा शो ऑफ करना होता है कि वो क्या है, रचित ने आंखें घुमाकर कहा। ऐसी सिचुएशन में भी तुम उसे भला बुरा कह रहे हो, वो किसी प्रॉब्लम में है और ये मैसेज कोई भी पढ़ सकता है, बस इसीलिए उसने इस तरह लिखकर भेजा है, अभिमान ने उसे तुरंत डांटा। लगभग 10 मिनट बाद रचित के सामने एक नॉर्मल मैसेज लिखा हुआ स्क्रीन पर आ रहा था। उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर हल्के मायूसी के भाव थे, लेकिन अभिमान को भी मैसेज बताना जरूरी था। उसने लिखा है, वो ठीक है और उसका इंतजार मत करना, रचित ने धीमी आवाज में कहा। एक पल के लिए कॉल पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। रचित को पता था कि वो मैसेज सुनने के बाद अभिमान को बुरा लग रहा होगा। जाहिर सी बात थी, वो उसका इंतजार कर रहा था, जबकि आशिका उसे उसका इंतजार करने से मना कर रही थी। मुझे लगता है कि ये उसने नहीं छोड़ा होगा, रचित ने उसे तसल्ली देने के लिए कहा। वरना वो तुम्हें ऐसा क्यों कहती कि मेरा इंतजार मत करना? हो सकता है कि तुम्हारे डैड ने उसे फोर्स किया होगा, या किसी और ने। रचित बोलते हुए रुक गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अभिमान का दिल कैसे हल्का करे। अभिमान ने गहरी सांस ली और जवाब में कहा, नहीं, ये मैसेज उसी ने लिखा है। इस तरह की लैंग्वेज और इतनी सिक्योरिटी का इस्तेमाल उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। दूसरी बात, तुम अच्छे से जानते हो कि ज्यादा लोगों को नहीं पता है कि ऐश कौन है। अभिमान लॉजिकली बिल्कुल सही कह रहा था और उस पर बहस करने का कोई सवाल नहीं था। कुछ पल रुककर अभिमान ने वापस कहा, क्या तुम इसी लैंग्वेज में उसे रिप्लाई दे सकते हो? मैं उसे बताना चाहता हूँ कि अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो मैं उसके पास आ सकता हूँ, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो पाएगा, रचित ने जवाब दिया और तुरंत उसी तरह का मैसेज बना दिया था। लेकिन जब आशिका को भेजने के लिए रचित ने उसके एड्रेस पर क्लिक किया, तो वो क्रैश हो रहा था। डैम, रचित ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा। क्या हुआ? अभिमान ने हल्का घबरा कर पूछा। वही जिसकी उम्मीद थी, वो नहीं चाहती थी कि किसी को उसकी लोकेशन का पता चले, और मुझे लगता है कि तभी उसने ऐसी लैंग्वेज और एक ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है जो उसने मैसेज भेजते ही तुरंत डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम नहीं जानते, इसमें ऐश का कोई जवाब नहीं है। डेटा ट्रांसफर करने और पिक करने के लिए वो उन सर्वर का इस्तेमाल करती है जो उससे मीलों दूर होते हैं, और किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि किस एग्जैक्ट लोकेशन से डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है। वो सॉफ्टवेयर बनाती है और उसे अपने इस्तेमाल के बाद तुरंत डिस्ट्रॉय कर देती है। वो कमाल की है। रचित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हालांकि सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन फिर भी रचित आशिका की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। अभिमान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा, और मुझे पता है तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगी। अगर तुम एक ऐसी सिचुएशन में हो जहां तुम किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती, फिर भी तुमने मुझे मैसेज भेजा, इसका मतलब तुम्हें मेरी फिक्र है। मैं पता लगा ही लूंगा कि तुम कहाँ हो ऐश, अभिमान ने दृढ़ स्वर में कहा। अब अभिमान को आशिका की फिक्र नहीं थी कि वो किसी मुसीबत में हो सकती है, लेकिन साथ ही वो उसे बहुत मिस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ, इशिका इस वक्त राजवंश एम्पायर में बैठी हुई कुछ डेटा देख रही थी। आखिरी बार उसने पृथ्वी को अभिमन्यु की सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सतर्क रहने के लिए कहा था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा था। इशिका अभिमन्यु की सिक्योरिटी को देखते हुए उसकी गाड़ी के डैश कैम की फुटेज देख रही थी। अभिमन्यु इस वक्त मीटिंग रूम में था, तो उसने पृथ्वी को अपने केबिन में बुलाया। गुड मॉर्निंग मिसेज राजवंश, अंदर आते ही पृथ्वी ने कहा। क्या तुमने अभिमन्यु की सिक्योरिटी को टाइट किया? इशिका ने उसकी तरफ देखते ही तुरंत पूछा। हाँ, आपने आखिरी बार कहा तब मैंने ऐसा किया था, और गाड़ी के अंदर भी एक और कैमरा इंस्टॉल करवा दिया था, लेकिन उस दिन के बाद से उनकी गाड़ी के पीछे मैंने किसी अजीब गाड़ी को नहीं देखा, पृथ्वी ने जवाब दिया। यही तो हैरान करने वाली बात है, पुरानी फुटेज में वो गाड़ी लगातार अभिमन्यु का पीछा कर रही थी, लेकिन जैसे ही हमारा उस तरफ ध्यान गया और मैंने तुम्हें सिक्योरिटी बढ़ाने को कहा, उस दिन के बाद से वो गाड़ी गायब हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारी बात सुन पा रहा हो, इशिका ने आंखें छोटी करके कहा। पृथ्वी ने उसकी हर एक बात को गौर से सुना और कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा,
ऑफिस में सारा स्टाफ ट्रस्टवर्दी है और आपके कहने पर मैं फिर से फुटेज को देखा था। मुझे लगता है वो गाड़ी को इंसिडेंटली वहां पर हमारे साथ दो तीन जगह पर गई होगी, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, इशिका बोली। आज सुबह जब मैं यहाँ पर ऑफिस आई तो मैंने इस तरह की ब्लैक कार को हमारे पार्किंग एरिया में देखा। उस गाड़ी को देखने के बाद ही इशिका के दिमाग में दोबारा अभिमन्यु की सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ गई थी। अगर आप कह रही हैं तो मैं पार्किंग एरिया का फुटेज भी देख लेता हूँ, फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको कौन सी गाड़ी पर शक है, पृथ्वी ने शांत लहजे में जवाब दिया। अगर इशिका को किसी चीज पर शक था तो पृथ्वी ने इसे बहलाने के बजाय हर एक पहलू को देखना चाहता था। वो खुद अभिमन्यु की सिक्योरिटी को लेकर चिंतित था। पृथ्वी ने तुरंत अपने सेक्रेटरी को कॉल किया और अपने आईपैड को पार्किंग एरिया की फुटेज से कनेक्ट करवाया। इशिका पृथ्वी के साथ सुबह से फुटेज देख रही थी। जैसे ही वो काली गाड़ी इशिका की गाड़ी के पीछे वहां रुकी तो इशिका जल्दी से बोली, बस यहीं पॉज करो, यही वो कार है। आई यू श्योर? पृथ्वी ने इशिका से कन्फर्म करने के लिए पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं धोखा नहीं खा सकती और मेरी मेमोरी भी फोटोग्राफिक है, इशिका ने जवाब दिया। पृथ्वी ने तुरंत फुटेज को बंद कर दिया था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो इशिका की तरफ देखकर कॉन्फिडेंस भरे चेहरे के साथ बोला, तब तो आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे सेक्रेटरी की गाड़ी है और मैंने ही इसे आपकी गाड़ी के पीछे रहने के लिए कहा था। कई बार मैं मिस्टर राजवंश के साथ नहीं हो पाता, तब भी मैं अपने सेक्रेटरी प्रणय को उनके पीछे जाने के लिए कहता हूँ। ये प्रणय की गाड़ी है और मैं उसे यहाँ बुला भी सकता हूँ। पृथ्वी ने अपनी तरफ से इशिका को सब कुछ साफ कर दिया था, लेकिन फिर भी इशिका के चेहरे पर वही परेशानी के भाव थे। उसने पृथ्वी की तरफ देखकर कहा, उसने कब ज्वाइन किया? ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम ज्वाइन किया था। पुराने सेक्रेटरी ने कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते रिजाइन कर दिया था, पृथ्वी ने बताया। और मेरे एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था? इशिका ने पूछा।
उसके पीछे स्कॉट एंटरप्राइजेस का हाथ था और वो जिस इंटरनेशनल कंपनी के साथ जुड़ी हुई थी, लगभग एक महीने पहले उसके खिलाफ भी काफी सारे सबूत पुलिस के हाथ लगे थे। हालांकि कंपनी पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, लेकिन उसकी इमेज को भारी नुकसान हुआ था और आज भी वो कोर्ट के चक्कर निकाल रही है। ये वही कंपनी है जो नक्श की कंपनी को फंड करती थी। उस वक्त आशिका और सर ने मिलकर ही उनका डेटा लीक किया था। पृथ्वी ने हर एक चीज इशिका को सिरे से बता दी थी ताकि उसके दिमाग में किसी तरह का शक न रहे। हालांकि चीजें पूरी तरह सुलझी हुई लग रही थी, ऊपर से अभिमन्यु और पृथ्वी की नजर हर एक पहलू पर थी, फिर भी न जाने क्यों इशिका के दिल में एक बेचैनी सी थी। ठीक है, फिर भी अभिमन्यु की सिक्योरिटी का ध्यान रखना और एक बार मैं तुम्हारे सेक्रेटरी से मिलना चाहती हूँ, इशिका बोली। पृथ्वी ने उसकी बात पर हामी भरी और वहां से चला गया था। उसने तुरंत अपने सेक्रेटरी प्रणय को इशिका के पास भेज दिया था। वो एक 26-27 साल के आसपास का लड़का था जिसके घुंघराले बाल थे और उसने आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगा रखा था। उसने आते ही इशिका को गुड मॉर्निंग विश किया और वो उसके सामने सर झुकाकर खड़ा हुआ था। पृथ्वी ने बताया, तुमने अभी ज्वाइन किया है और साथ ही तुम काफी बार मेरे और अभिमन्यु की गाड़ी के पीछे होते हो, इशिका ने उसे घूरते हुए पूछा। आई होप कि मैंने आपको और मिस्टर राजवंश को ऑकवर्ड फील नहीं करवाया होगा, बाकी ये मेरे काम का हिस्सा है, प्रणय ने धीमी आवाज में कहा। इशिका ने बिना कुछ कहे ना में सिर हिला दिया था। इशिका के मन के शक को दूर करने के लिए पृथ्वी ने प्रणय का पर्सनल डेटा भी उसके पास भिजवा दिया था ताकि इशिका को पूरी तरह संतुष्टि हो सके। इशिका प्रणय के बारे में जरूरी चीजें जानती थी। वो देखने में भी सीधा साधा लग रहा था। इशिका ने उससे ज्यादा बात नहीं की और उसे बाहर भेज दिया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इससे पहले भी मिली हूँ? आई होप ये बस मेरे मन का भ्रम हो। फिलहाल मैं इसे काम से निकलने के लिए भी नहीं कह सकती, इशिका ने मन ही मन कहा। वहीं प्रणय इशिका के ऑफिस से बाहर आ गया था। उसने अपना चश्मा सही किया और रुमाल निकालकर अपने माथे का पसीना साफ करने लगा। क्या सच में उसने मुझे नहीं पहचाना या फिर वो किसी तरह का दिखावा कर रही है, प्रणय ने अपने मन में कहा। इशिका को प्रणय का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था और ये किसी तरह का भ्रम नहीं था। जब वो स्कॉट इंटरप्राइजेज में इंस्पेक्शन के लिए गई थी तब उसने प्रणय को अपनी गाड़ी के पास देखा था। वो प्रणय ही था जिसने इशिका की गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ आशिका लंबे समय से काम कर रही थी। जब से वो आई थी तब से उसने मुश्किल से ही एक दो घंटे आराम किया होगा। अगली रात को जब सब सोने के लिए जा रहे थे तब भी आशिका अपने काम में लगी हुई थी। कैप्टन विराज अपने कीबिन में बैठकर स्क्रीन पर आशिका को देख रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, इस एजेंसी में ये इकलौती लड़की ऐसी है जिसे रेस्ट करने के लिए भी कहना पड़ता है। आई नो कोड रेड है, बट ये इसी तरह काम में डूबी रही तो मुझे इसके लिए डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। आशिका को काम करने से रोकने के लिए कैप्टन विराज ने उस हिस्से का इंटरनेट से लेकर लाइट तक जाम कर दी थी। आशिका के आसपास बिल्कुल अंधेरा हो गया था। ये अचानक से ब्लैकआउट कैसे हो गया, आशिका बोली और वो खुद को संभालते हुए बाहर आई तो बाहर अच्छी खासी रोशनी थी। आशिका को समझते देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। आशिका ने अपने टेक लैब के बाहर लगे कैमरे की तरफ देखा। कैप्टन विराज भी उसी को देख रहे थे। आई वॉन्ट टू वर्क, आशिका ने बिना किसी भाव के कहा। उसे लगा उसकी बात मानकर विराज लाइट्स वापस ऑन कर देगा, लेकिन उस एरिया की लाइट भी बंद हो गई थी। मजबूरन आशिका को आराम करने के लिए ऊपर के फ्लोर पर बने रेस्ट रूम में जाना पड़ा। उसे उसके कमरे का की कार्ड मिल गया था, लेकिन अब तक आशिका ने उसे यूज नहीं किया था। लिफ्ट में ऊपर पहुंचाने के बाद उसने की कार्ड के नंबर से अपना कमरा ढूंढा और अपने रूम में आ गई थी। आते ही आशिका सबसे पहले नहाई और चेंज करके बेड पर पहुंची। वो काफी थकी हुई थी और इतनी देर में उसने ठीक से बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। उसके बावजूद आशिका को नींद नहीं आ रही थी, उल्टा उसे गुस्सा आ रहा था। काफी देर तक करवटें बदलने के बाद आशिका ने अपना तकिया फेंका और जोर से चिल्लाई, ब्लडी हॉर्मोन्स। आशिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी और इस वक्त खुद उसके लिए यह स्वीकार कर पाना मुश्किल हो रहा था कि उसे अभिमान की इस कदर आदत हो गई थी कि उसे उसके बिना नींद तक नहीं आ रही थी। बेचारी आशिका, उसने ही सोचा होगा कि खुद को काम में डुबो कर रखेगी तो अभिमान का ख्याल नहीं आएगा, पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। वैसे क्या लगता है, प्रणय के इरादे क्या होंगे? और हाँ, पढ़कर समीक्षा करना ना भूले।